अगला टॉपिक है मुसलमान आपस में कैसे रहें। टॉपिक से ही जहन में एक बड़ा खूबसूरत सा तसव्वुर आता है कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड लोगों का एक गिरोह है और उसके एक दूसरे के साथ ताल्लुकात किस तरह के होने चाहिए। इस टॉपिक की बुनियाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो अबू दाऊद में है। आपने फरमाया, ला तबाग़ज़ू, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना करो, वला तहासदू, एक दूसरे से हसद ना करो, वला तदाबरू, एक दूसरे से पीठ ना फेरो, सब अल्लाह के बंदे भाई भाई बन जाओ। किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि अपने भाई को 3 रात से ज़्यादा छोड़े। सिर्फ़ एक कॉल है अल्लाह के नबी का, लेकिन इसमें मुसलमानों को आपस में रहने के बहुत ही खूबसूरत अदब सिखाए गए। पहली चीज़ के बुग़्ज़ ना हो, दूसरी चीज़ हसद ना हो, एक दूसरे से पीट ना फेरी जाए, अल्लाह के बंदे भाई भाई बनकर रहें और 3 रात से ज़ायद ना छोड़ें, यानी नाराज़ ना हों कि 3 दिन से ज़ायद गुजर जाएं और बात ना करें। अब हसद बुग़्ज़ पीट फेरना क्या है, ये तो इंशाल्लाह तज़किया नफ्स में आप देखेंगे ही, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि मुसलमानों के आपस के ताल्लुकात की क्या अहमियत है और मुसलमान होता कौन है। अल्लाह के वो बंदे जो अल्लाह को हकीकी मानों में अपना माबूद बना लें, इनको मुसलमान कहते हैं। सोचे, क्या मैं हकीकी मानों में अल्लाह ताला को अपना माबूद बना चुकी हूँ? कैसे पता चले? ये अपना मुहासबा करने से पता चलेगा। कुछ सिम्टम्स होती हैं ऐसे लोगों की। क्या? इनका दिल हर किस्म के मनफी जज्बात से खाली हो जाता है। सोचिए, क्या मेरा दिल हर किस्म के मनफी और नेगेटिव जज्बे से खाली हो चुका है? साथ ही साथ टिक मार्क लगाते जाएं ताकि अपने आप को डिस्कवर कर सकें। जिन लोगों का दिल खुदा की बुलंदियों में अटका हुआ हो, सोचिए, क्या मेरा दिल अल्लाह की बुलंदी में अटका हुआ है? दूसरों को तो नहीं बड़ा समझती? वो दुनिया की पस्तियों में लतपत होकर नहीं रह सकते। सोचिए, क्या मैं दुनिया की चीज़ों के पीछे ही तो नहीं पड़ी हुई कि उसी को अपना मरना जीना बना के उसको ही ज़िंदगी की खुशियों और गमों का महवर बना लूं? ऐसे लोग अपने भाइयों के दरमियान इस तरह रहने लगते हैं जैसे हवा लोगों के दरमियान से गुज़रती है, मगर वो किसी से नहीं टकराती। अपना जायज़ा लेते हैं, क्या मैं अपने साथ वालों के दरमियान इस तरह रहती हूँ जैसे हवा हमारे दरमियान से गुज़रती है टकराए बगैर? मुराद क्या है कि टकराव की पॉलिसी नहीं होती इनकी। जैसे फूल की महक हर एक को पहुंचती है, मगर वो एक और दूसरे में कोई इम्तियाज़ नहीं करती। सोचिए, क्या मेरा अखलाक भी फूलों की महक की तरह हर एक को पहुंचता है? यह चंद लोगों तक तो मैं बहुत अच्छी हूँ और चंद तक अच्छी नहीं हूँ। जैसे रोशनी हर एक के पास आती है, मगर वो किसी से खुश और किसी से खफा नहीं होती। अपना जायज़ा लेते हैं, क्या मैं रोशनी की तरह हर एक के पास आती हूँ, किसी से नाराज़ और किसी से खुश तो नहीं रहती? ऐसे लोग इसी तरह एक दूसरे के मुकम्मल साथी होते हैं, जैसे बाग के दरख्त एक दूसरे के बगैर बगैर किसी किस्म की बाहमी रंजिश के एक मुकाम पर खड़े हुए हों। क्या मैं अपने साथियों के साथ दरख्तों की तरह साथ रहते हुए भी उलझे बगैर रहती हूँ? अगर ये सारी अलामतें आपने अपने अंदर पा ली तो मुबारक हो, क्या आप मुसलमान हो गईं, आपने इस्लाम कबूल कर लिया और आप शऊर के रास्ते इस्लाम में आईं, ना कि सिर्फ रिवायत और रस्म के रास्ते। इस्लाम के रिस्क में से इंसान को हिस्सा मिला है कि नहीं, इसकी एक वाज़ह पहचान ये है कि वो अपने भाइयों के दरमियान इस तरह रहने लगे कि इसको न किसी से बुग़्ज़ हो और न हसद। किसी काबिले शिकायत बात पेश आने पर वो अपने भाई से बिगड़ न जाता हो, वो सारे लोगों को अल्लाह की अयाल समझकर इस तरह रह रहा हो जैसे एक बाप की औलाद मिलजुल कर रहती है। इस किस्म का जहन जिस शख्स के अंदर पैदा हो जाए, वो अपने मिजाज के एतबार से ऐसा हो जाएगा कि कि किसी भाई से अगर इसका बिगाड़ हो जाए और वक्ती तासर से मगलूब होकर वो इससे जुदाई इख्तियार कर ले, तो 3 दिन गुजरते गुजरते इसका सीना फटने लगेगा। वक्ती जज्बे ने इसको जिस भाई से दूर किया था, इससे वो अपने रब की खातिर दोबारा इस तरह मिल जाएगा जैसे कि इसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। सोचिए ज़रा, यहाँ भी अपना मुहासबा कर लेते हैं, क्या मुझे अपने साथ वालों से बुग़्ज़ तो नहीं, किसी से हसद के जज्बात दिल में तो नहीं रखती, क्या कोई काबिले शिकायत बात पेश आने पर मैं अपने साथ वालों से बिगड़ तो नहीं जाती, क्या मैं सारी मखलूक को अल्लाह का कुंबा समझकर उनके लिए दिल में नरम गोशा रखती हूँ कि नहीं, क्या अगर किसी से कोई बिगाड़ हो भी जाए तो 3 दिन की जुदाई के बाद मेरा सीना फटने लगता है और जाके जल्दी से उसको मना लेती हूँ कि नहीं, और दोबारा उसके साथ ऐसे रहने लगती हूँ कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुसलमानों के 43 आज़ाद ममालिक हैं, यानी 43, जिनकी आबादी तकरीबन 60 करोड़ है, 60 करोड़। जुग्राफियाई एतबार पर कुल दुनिया की 21%, यानी 21% हिस्सा वो है जहाँ मुसलमानों को इक्तदार हासिल है। मुसलमान दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 23, यानी 23% हिस्सा हैं। दुनिया के कुदरती ज़राए का तकरीबन निसफ हिस्सा इनके कब्ज़े में है, मगर तालीम, बाहमी इतिहाद, सनती तरक्की में वो दुनिया भर में सबसे पीछे हैं। इतनी बड़ी तादाद अगर इस हदीस के मुताबिक आपस में भाई भाई बनकर, तो एक ऐसी ताकत होगी जिसको ज़ेर करना किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। मतलब क्या है कि मुसलमान इतनी तादाद में होने के बावजूद, इतने रिसोर्सेस होने के बावजूद, मुसलमानों के पास ज़मीन के खित्ते मौजूद, मुसलमानों के पास दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मौजूद, लेकिन अगर मुसलमान एक ताकत नहीं बने तो इसकी वजह क्या है कि हम अभी भाई भाई नहीं बने। आपस के इंतशार और तफरकों ने हमारी ताकत को तोड़ दिया। तो लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हम मुसलमान बनकर रहें, तो फिर उसके लिए हमें आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहना होगा। बुग़्ज़ को तो पैदा करना ही नहीं, हसद महसूस होने लगे तो औज़ुबिल्लाह पढ़ना है, और किसी से इख्तलाफ हो जाए तो 3 दिन भी मोहलत नहीं देनी खुद को कि अपनी बड़ाई में बड़े बने रहें। कोई पहल ना करे तो ख़ुद पहल करके पहल करने वाले का अजर पाना है। इंशाल्लाह ऐसे लोग अगर किसी जगह जमा हो जाएंगे तो वो सिर्फ 313 भी होंगे तो 1000 पर गालिब आएंगे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे अंदर ये औसाफ पैदा कर दे, हम अपना मुहासबा करने वाले बने। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, हमें भी इस मिल्लत के मुकद्दर का सितारा बनने की अल्लाह तौफीक दे। दूसरों के बिगाड़ का शिकवा करने के बजाय हम इस्लाह की कोशिश करने वाले बन जाएं। अगला टॉपिक है इस मौजू का, ये दुश्मन का हथियार है। इसकी बुनियाद एक इसराइली लीडर मोशे दयान, जो 1915 में पैदा हुआ, इसने अपनी खुद नवेश सवाने उमरी में, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी की कहानी। इसराइल के साबिक वज़ीर जंग ने अपने हालात के ज़ेल में अरबों का तذکرہ करते हुए लिखा, गैर मुत्तहिद अरब जो हर छोटे बड़े मसले पर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, इसराइल के लिए कोई ख़तरा नहीं बन सकते। यानी ये इसका कमेंट था अरबों के बारे में कि जो छोटी छोटी बातों पे ख़ुद लड़ते हैं, फिर इसराइल को उनसे क्या ख़तरा है। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी इंसानी माशरे में इख्तलाफ ना हो, यानी हमेशा रहता है इख्तलाफ, लेकिन ये इंतहाई तौर पर ज़रूरी है कि इख्तलाफ को टकराव और दुश्मनी तक पहुँचने ना दिया जाए। इख्तलाफ जब तक फ़िक्री इख्तलाफ के दर्जे में हो, इससे कोई हकीकी नुकसान नहीं होता, यानी जहन में हो सिर्फ वो, मगर जब इख्तलाफ बाहमी टकराव की सूरत इख्तियार कर ले, यानी जुमले ऐसे बोले जाएं एक दूसरे के ख़िलाफ़, ज़ुबान पे बातें आएं, अमली कार्रवाइयां शुरू हो जाएं, तो इससे बड़ी कमज़ोरी किसी मुआशरे के लिए कोई और नहीं। اسلام میں اتحاد اور اتفاق کو بے حد اہمیت دی گئی ہے۔ اس کا سب سے زیادہ نازک پہلو یہ ہے کہ وہ مسلم گروہ خدا کی نصرت سے محروم ہو جاتا ہے جس کے افراد آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے۔ حدیث میں ہے کہ لیلۃ القدر کے تعین کا علم صرف اس لیے اٹھا لیا گیا کہ مدینہ میں دو مسلمان باہم لڑ پڑے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبادہ بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ ایک روز نکلے کہ ہم کو شب قدر کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کس روز ہے۔ اس وقت دو مسلمان آپس میں ایک قرض کے بارے میں لڑ پڑے۔ آپ نے فرمایا، میں اس لیے نکلا تھا کہ تم کو شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں اور فلاں آپس میں لڑ پڑے، پس اس کا علم اٹھا لیا گیا۔ حافظ ابن کثیر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اپنی تفسیر یعنی سورۃ القدر میں کہتے ہیں کہ آپس کا لڑائی جھگڑا لوگوں کو فائدے سے محروم کر دیتا ہے اور نفع بخش علم ان سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ ملنے والے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا دیکھنا کیا ہے کہ کیا ہمارے آپس کے جھگڑے اللہ کی رحمتوں کو ہم سے دور تو نہیں کر رہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں کہیں ہم سے روٹ کر غیروں کو تو نہیں ملتی جا رہی؟ آج ہم جب غیروں پہ بہت زیادہ اچھے حالات دیکھتے ہیں، ان کے اوپر بڑی آسمانی اور زمینی رحمتیں برستی دیکھتے ہیں، تو کبھی شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے، آپ کے دروازے پہ کوئی نوک کرے، آپ دروازہ نہ کھولیں، تو پھر وہ ساتھ والے کو دی جا سکتی ہے نا، چلو بھائی یہ تو نہیں ہے، تم لے لو یہ چیز، اس سے تم فائدہ اٹھا لو۔ جب مسلمان آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں نا، تو اس وقت پھر مسلمانوں کی خیر دوسروں کے حصے میں چلی جاتی ہے۔ تو ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ہی وجہ بنی ہوں امت مسلمہ کی تنگی اور ترشی کا، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ٹاپک ہے اسی مضمون کو سمجھنے کے لیے، اتحاد کی قیمت۔ بہکی اور ابن اساکر نے عروہ بن زبیر سے روایت کیا، رسول اللہ نے غزوہ ذات السلاسل کے لیے ایک دستہ حضرت عمر بن عاص کی سرداری میں بھیجا۔ یہ جگہ شام کے اطراف میں تھی۔ حضرت عمر بن العاص جب وہاں پہنچے اور حالات معلوم کیے تو جو دشمن کی کثرت سے ان کو خوف پیدا ہوا، یعنی فطری بات ہے کہ جب پتہ چلے کہ دشمن بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہے تو بشریت کے تحت خوف تو آتا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیج کر مزید مدد طلب کی۔ آپ نے مہاجرین کو بلایا اور 200 آدمیوں کا ایک دستہ تیار کیا۔ اس دستے میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم اجمعین بھی شامل تھے۔ آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اس دستے کا امیر مقرر کیا اور حکم دیا کہ فوراً روانہ ہوں اور عمر بن العاص سے جا کر مل جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا دستہ جب منزل پر پہنچا اور دونوں دستے ساتھ ہو گئے، اب ذرا آپ اس معاملے کی نزاکت پہ غور کیجئے گا، دونوں دستے مل گئے، ایک پہلے سے موجود تھا، دوسرا اب آیا۔ اب ایک کے لیڈر عمر بن العاص تھے، دوسرے دستے کا لیڈر ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ اب جب دو دستے مل کر ایک ہو گئے تو سوال پیدا ہوا کہ دونوں کا امیر کون ہو، کیونکہ دو امیر تو نہیں رہ سکتے نا، جیسے دو ڈرائیور ایک گاڑی کو نہیں چلا رہے ہوتے۔ عمر بن العاص نے کہا، میں تم سب کا امیر ہوں، میں نے رسول اللہ کو اپنی مدد کے لیے لکھا تھا، تم لوگ اس کے مطابق میری مدد کے لیے بھیجے گئے ہو۔ یعنی چونکہ پہلے شروع میں یہی تھے نا، تو ان کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ جو مہاجرین آئے تھے انہوں نے اس کو نہیں مانا، انہوں نے عمر بن العاص سے کہا، تم اپنے ساتھیوں کے امیر ہو اور ابو عبیدہ ہمارے امیر ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کو ابو عبیدہ کی عمارت میں رکھا۔ اب یہاں دیکھیے کہ اختلاف نہیں ہے، بات دیکھیں تو دونوں کی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پیچھے سفر میں اتنے دن سے ابو عبیدہ کو ہی امیر مان رہے تھے اور اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ابو عبیدہ تمہارے امیر ہیں۔ ہو سکتا ہے اس وقت اللہ کے نبی نے یہ نہ بولا ہو کہ یہاں تک تو یہ ہیں، لیکن جب لشکر سے مل جاؤ گے تو عمر بن العاص ہوں گے، تو ان کا پوائنٹ بالکل اپنی جگہ پہ ٹھیک تھا اور انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ حضرت عمر بن العاص اس تقسیم پر راضی نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ اس طرح نظام نہیں چل سکتا تھا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ تمہاری حیثیت امدادی فوج کی ہے اور تم لوگ میرا ساتھ دینے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ ان کی بات بالکل درست تھی کہ تم تو میرے مانگنے پہ بھیجے گئے ہو، تو اب تم تو میری مدد کے لیے آئے ہو، نہ کہ اب یہ کہ تمہارا ایک الگ تشخص और अलग पहचान हो जाए। अब ज़रा सोचिए कि मामला कितना सेंसिटिव है। पॉसिबल था ना कि दुश्मन से लड़ने की बजाय खुद ही लड़ने लगे। लेकिन देखिएगा यहाँ क्या होता है। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने जब ये हाल देखा तो कहा, मैं इनकी बात कहने से पहले आप सबको अगर चंद सेकंड दूँ और सोचें कि इस वक्त क्या नतीजा निकलना चाहिए था, इस वक्त क्या हल था इस मसले का, आप भी चेक कर सकें कि कैसे आपको ऐसे मामलात में डील करना है। ज़िंदगी में मामलात बहुत सारे आएंगे। जब भी आप बड़े काम करेंगे, मामले भी बड़े होते जाएंगे, मसले भी बड़े होते जाएंगे। तो आइए ज़रा अबू उबैदा का कॉल सुनते हैं। कहने लगे, ए अमर, तुम पर वाज़े हो कि रसूलुल्लाह ने मुझको रुख्सत करते हुए जो आखिरी अहद लिया वो ये था कि जब तुम अपने साथी के पास पहुँचो तो दोनों इत्तेफाक के साथ मिलकर काम करना, बाहम इख्तलाफ ना करना। बस खुदा की कसम, अगर तुम मेरी बात ना मानोगे तब भी मैं तुम्हारी इताअत करूँगा। रावी कहते हैं कि इसके बाद अबू उबैदा ने अमारत अमर बिन अलास के हवाले कर दी और इनकी मातहती में काम करने पर राजी हो गए। यह अलबिदाया और नहाया की जिल 4 में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। अगर दोनों अपना अपना इसरार जारी रखते तो मसला ख़त्म ना होता, और जो ताकत दुश्मन से मुकाबले के लिए भेजी गई थी वो आपस में लड़कर फना हो जाती। ऐसे इख्तलाफी मवाक़े पर एक शख्स का झुकना पूरी जमात को ताकतवर बना देता है और एक शख्स के ना झुकने से पूरी जमात कमज़ोर हो जाती है। ये है इत्तेहाद की कीमत, अना की कुर्बानी, ज़ात की कुर्बानी, अपनी राय पीछे ले आना, अपनी बात को पीछे कर देना। आप सोचिए ज़रा क्या हालात होते होंगे उस वक्त जब इस तरह के मंज़र आसमान देखता होगा। यही है आज भी तफरकों और इख्तलाफात से निपटने का तरीका। एक बात करते हुए दूसरी को ना भूल जाए। बस जब हम एक बात पे इतना ज़ोर दे रहे होते हैं कि उस वक्त दूसरा पहलू हमसे छुप चुका होता है, तो हम अपना मुहासबा भी कर सकते हैं कि जब कभी मुझे लीडर होने के बावजूद किसी दूसरे के मातहत होना पड़े तो उस वक्त मेरा रवैया क्या होता है। क्या अपनी ज़ात की बड़ाई मतलूब होती है या दीन की बड़ाई मतलूब होती है। इख्तलाफात से बचते हुए क्या मैं वो रवैया अख्तियार करती हूँ जो मेरे दीन को फ़ायदा दे, या अपनी ज़ात के बुत को पूछती हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपना मुहासबा करने वाला बना दे। जी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जी इन्होंने लिखा कि फैमिली मैटर्स में भी इस तरह ये बेस्ट वे है। बिल्कुल, अब देखिए कि बात तो हम करें ना मिल्लत के इत्तेहाद की, कौम के इत्तेहाद की, तो कौम कैसे बनती है? ख़ानदानों से, अफराद से बनती है ना। तो यही मामलात ज़िंदगी के हर पहलू में होंगे। शौहर बीवी का इख्तलाफ हो, माँ बच्चों का इख्तलाफ हो, रिश्तेदारों का इख्तलाफ हो, हर जगह देखिए इख्तलाफ से हर मुमकिन बचना है। मुखालफत में नहीं बदलने देना इख्तलाफ को, उससे पहले उसको ख़त्म कर दें। इसलिए कि छोटी छोटी चीज़ें भड़ती हैं तो भड़ी होती हैं। यानी जिस माशरे में ख़ानदानी इख्तलाफ हो, शौहर बीवी के झगड़े हों, बताइए वहाँ पूरी उम्मत कैसे मिलेगी। अगर इस वक्त हम डिफरेंट फोरम्स की बात करें, एक सियासी फोरम है, एक मजहबी फोरम है, एक माशरती फोरम होगा, एक इकनॉमिकल फोरम होगा, मुख्तलिफ फोरम्स हैं ना किसी भी सोसाइटी में। अगर दीनी रहनुमा भी झगड़ रहे हों, सियासी रहनुमा भी झगड़ रहे हैं, माशरती मामलात करने वाले भी झगड़ रहे हैं, मुआशी वाले भी झगड़ रहे हैं, सोशल वर्कर भी झगड़ रहे हैं, तो आप बताइए मिल्लत कहाँ से बननी है। तो बिल्कुल इन सारी चीज़ों के ऊपर इंसान गौर करे तो अपना हिस्सा डाल सकता है। ये कहती हैं कि इत्तेहाद की दुश्मन अना होती है, इसको अपने अंदर से ख़त्म करना है। यानी अना को अंदर ही मार दें, अना की मौत कर दें उसको, यानी ख़त्म करेंगे तो इंशाल्लाह आपका किरदार बहुत उभर के सामने आएगा। ये लिखते हैं कि मुस्लिम उम्मा नीड्स दिस काइंड ऑफ इत्तेहाद। बेशक जो अल्लाह ताला के लिए तवाज़ो इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसको बुलंदी देगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी। और अल्लाह के नबी ने कसम खा के कहा था कि जो अल्लाह के लिए झुकेगा अल्लाह उसको ज़रूर इज्जत देगा। तीन बातों में से एक ये बात थी। ये लिखते हैं कि ईगो जो है ये सबसे बड़ी रुकावट है इत्तेहाद के रास्ते में। बिल्कुल वजह फरमाया आपने कि अना ही वो चीज़ है जो बाज़ दफ़ा दूसरों को पीछे नहीं करने देती। यकीन करें जब आप छोटी चीज़ों पर लड़ता देखते ना लोगों को, मिसाल है कि 5 मिनट नमाज पहले हो के बाद में हो, या जो नमाज़ पढ़ा है उसकी दाढ़ी लंबी हो कि छोटी हो, इस तरह की बातें मिसाल दे रही हूँ मस्जिदों में, या दीनी इदारों में भी हो सकती हैं कुछ इस किस्म की बातें, तो आप सोचा करें कि ये क्या बातें हैं जिसको लेके बैठे हैं। इसमें पीछे अना ही निकलती है कि नहीं, चूँकि हमारा नाम है तो फिर हमारा हुक्म चलेगा, चूँकि हम फलां से जुड़े हुए हैं तो हम उसी के फॉलो करेंगे बात को, और इस तरह फिर उम्मत अना का शिकार होकर टूटने लगती है। जी ये लिखती हैं कि फॉरगिव एंड फॉरगेट फॉर सेक ऑफ अल्लाह ताला, बिल्कुल माफ़ करें और भूल जाएं। अब ये नहीं कि माफ़ किया और उसके बाद अब उसको रगड़ते रहें, इख्तलाफ की वजह से नफ़ा बख्श इल्म से महरूम हो जाता है, बिल्कुल सच्चा इल्म रुखसत हो जाता है उस शख्स से, उसके नसीब में रहता ही नहीं है कि जो कहीं भी तफरकेबाजी कर दे, इख्तलाफ करे, बाजार वो दूसरों को दीन से तोड़ता है लेकिन असल में वो खुद दीन से टूट जाता है। तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ फरमा दे।